सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण, नई रेलगाड़ियां और ढांचागत विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
भारतीय रेल आधुनिकीकरण की दिशा में अग्रसर है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। देश भर में रेल ढांचे के विस्तार और पुनर्विकास पर पिछले कई वर्षों से बल दिया जा रहा है। आज सुर्खियों में हम जानेंगे कि यह परिवर्तन यात्रियों के अनुभव और देश के विकास को कैसे प्रभावित करेगा, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। अरुणेंद्र जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आज नई ट्रेनों के उद्घाटन के अवसर पर रेल मंत्री ने कहा,
बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही है। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मध्य प्रदेश में दो गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर।
अरुणेंद्र जी, अभी जो नई ट्रेनें शुरू हुई है और जो नए पहल किए जा रहे हैं, जिनका उल्लेख किया अभी रेल मंत्री जी ने, वो जनता के नजरिए से, यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से कितने महत्वपूर्ण हैं?
इसको आप ऐसे समझिए कि जो ट्रेनें आज, तीन ट्रेन अभी बात हुई है, ये कोई बहुत मेट्रो सिटीज से कनेक्ट नहीं किया गया है, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता या चेन्नई से। ये टीयर टू सिटीज वाले जगह से कनेक्शन दिया गया है, भावनगर टू अयोध्या। ये तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और उसको कनेक्शन दिया, बीच में कई कई आपको शहर भी मिलेंगे। रीवा से पूना, रीवा एक बड़ा हब बनता जा रहा है मध्य प्रदेश में, और रीवा से पूना सीधी गाड़ी आना उन यात्रियों को भला करेगा जिनको थ्रू ट्रेने में तकलीफ होती है। इसी तरह से जबलपुर से रायपुर, ये एक बहुत अच्छा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, जहाँ पे सीधी गाड़ी नहीं है, दूर दूर की गाड़ियां बीच में रुकती हैं, चली जाती हैं, बट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग नहीं है। ये तीनों ट्रेनें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी और डेवलपमेंट के लिए, और एक नई पहल है रेल मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल की अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री द्वारा ये जो तीनों ट्रेनें चली गई हैं, ये एक नई दिशा दिखाता है कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
जी, पिछले 11 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क और उसकी आधारभूत संरचना का कितना विकास हुआ है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
देखिए, अगर ये प्रगति की बात की जाए तो एक तो काफी समय निकल जाएगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त प्रगति है कि आंखें चकाचौंध हो जाती है। स्पेशली अगर हम विदेश में देखा जाए भारत की रेल की प्रगति को थोड़ा सा अगर आपस में जोड़ें तो, लेकिन तब भी ये बहुत आवश्यक है कि देखिए, एक तो भारत ने सबसे पहले विद्युतीकरण करीब करीब पूरा कर लिया पूरे देश में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 2030 का लक्ष्य था और जो बहुत पहले ही खत्म होने जा रही है, 5 साल पहले जीरो कार्बन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब खत्म ही अपना पूरा काम जितना रेलवे का हो चुका है, और जो जनता को सामने होता हुआ दिखता है वो दो सेक्टर में दिखता है, एक तो मेट्रो में और एक वंदे भारत ट्रेनों में। वंदे भारत ट्रेन हर कोई आजकल हर एक की जुबान पर है, अगर वंदे भारत ट्रेन आपकी आती है, यानी आप टेक्नोलॉजी से दूर जुड़े हुए हैं। ये ट्रेन कम समय में लंबी दूरी पूरी करती है, डे लाइट डे ट्रेन है, रात की सेवा भी शुरू हो जाएगी। साथ साथ ये अमृत भारत ट्रेन का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें नॉन एसी ट्रेन चलेंगी, ये जनता के लिए बहुत ही प्रभावी है, जनता के लिए बहुत सहूलियत पैदा करेगी। मेट्रो ट्रेन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, कहाँ हमारे 248 किलोमीटर मेट्रो हुआ करती थी 2014 में, और जो बढ़ के हो गई 1013 किलोमीटर। और साथ ही साथ अब एक नया कॉन्सेप्ट जो रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आया है, यानी दो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए केवल वो पास वाले, जैसे एनसीआर के बाद दिल्ली मेरठ को उन्होंने जोड़ा है 85 किलोमीटर को नमो भारत ट्रेन से, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा चीज अब जो सामने अभी आई थोड़े दिनों पहले, वो हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से है। एक कॉन्सेप्ट रेलवे ने अपनी क्षमता से करके दिखा दिया है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही थोड़ी दूर के लिए हो, ये सबर छोटे सेक्शंस के लिए हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन हर कोई बात करता है और हर जगह है नहीं। जर्मनी में एक दो ट्रेनें चला करती है, भारत में इसको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें इंजन बनाने की क्षमता की, डब्बो बनाने की क्षमता की, तो इंजन पिछले साल भारत ने 1681 इंजन बनाए थे, जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सारे इंजन बनाते हैं जितने ये देश, उससे भी अधिक। ये भारत एक देश, दो फैक्ट्रियां, तीन फैक्ट्रियां जो है भारत के पास, चितरंजन, बनारस और पटियाला, अब दाहोद भी शुरू हो रहा है, ये भारत में बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। ट्रैक पे बात करें तो ये नई चीज है, ट्रैक में हमने 31,000 की नया रूट किलोमीटर ले किया है। रूट किलोमीटर मतलब एक जिस तरह से ट्रेन जोड़ी जाती है और दूसरी पटरी आती है तो दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं, तो 31,000 किलोमीटर जो है आगे बढ़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ आप देखेंगे वाईफाई तो स्टेशनों पे आजकल कॉमन सा ही हो गया, 6,000 स्टेशन पे वाईफाई चल रहा है। कवच की बात जो होते हैं सेफ्टी को लेके, 1548 किलोमीटर पे ऑपरेशनलाइज हो चुका है, दिल्ली मुंबई दिल्ली कलकत्ता पे पूरा हो जाएगा। सेक्शंस हम देखते हैं सुनते हैं आजकल कि भाई ये मथुरा से अब कोटा पूरा हो गया है, इससे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया है, ये जो कि ब्रिजेस की बात करें, चिनाब ब्रिज की बात करें, कश्मीर कनेक्टिविटी की बात करें, आप कश्मीर में ट्रेनें जाना शुरू हो गई हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये माननीय अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, जिन्होंने रेलवे को कभी भी धन की कमी नहीं होने दी और समय पर गति शक्ति के मोटर से सभी दूरियों को उन्होंने खत्म किया।
जी, आपने स्टेशनों का उल्लेख किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशनों के बारे में भी आज कहा।
11 वर्ष पहले अगर किसी स्टेशन पे जाते तो स्टेशन पे खड़े होना दूभर होता था। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज स्टेशन साफ सुथरे होते हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, गाड़ियां साफ सुथरी है, और जो 50-60 वर्षों के पुराने जो तकलीफें थी उनको इन 11 वर्षों में बहुत हद तक दूर किया है और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि नए तरह का रेलवे गढ़े, नए तरह का भारत बने।
अरुणेंद्र जी, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की परियोजना किस प्रकार देश में रेल यात्रा को नए युग में ले जा सकती है?
अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें सबसे, तो आप अयोध्या धाम का स्टेशन एक बार जरूर विजिट करिए। बिल्कुल ही दिशा या सोच ही अलग है, और सोच क्या अलग है, इन्होंने एक होल्डिंग एरिया बनाया है, सारी पटरियों के ऊपर वाली जगह को जोड़कर एक सेकंड फर्स्ट फ्लोर वही है, सेकंड फ्लोर वही है, इसमें बहुत सारे यात्री इकट्ठे किए जा सकते हैं और बड़े अच्छे, ऐसा नहीं कि बहुत ठूस के भरा जाए, बहुत ही ओपन है, कुर्सियां हैं, बैठने की जगह है, पंखे हैं, और करीब करीब 5 से 7 हजार छत के ऊपर बैठ सकते हैं और नीचे अलग है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। स्टेशन देखें तो एयरपोर्ट का बिल्कुल भूल जाएंगे, स्टेशन घुसते ही ऐसा लगता है कि कहीं और आ गए हम, ये नॉर्मल स्टेशन नहीं है। तो ये एक छवि है भारतीय रेल की स्टेशन डेवलपमेंट से। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले तो क्या होता था कि एक स्टेशन में आपने एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया, किसी स्टेशन पे आपने फ्लोरिंग चेंज कर दी, किसी स्टेशन पे आपने लाइटें लगा दी, किसी स्टेशन पे आपने एक लिफ्ट लगा दी। अब ऐसा नहीं है, वो पूरा एक स्टेशन लेते हैं और पूरे स्टेशन का कायाकल्प करते हैं, यानी उसमें लिफ्ट्स भी, एस्केलेटर भी, लाइटिंग भी, प्लेटफॉर्म फ्लोरिंग भी, रूफिंग भी, यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई, कोच इंडिकेटर, सभी चीजें एक साथ आती हैं जिससे पता चले कि वाकई आपका कोई बदलाव हुआ है। तो सबके लिए कहना चाहता हूँ धनराशि की आवश्यकता होती है, और धनराशि जो है सरकार ने बिल्कुल दी है, और जिससे काम करने में बहुत सहूलियत मिली, और स्टेशन एक दो नहीं कई स्टेशनों की बात हो रही है जो एक साथ आपने हमको दिखाया।
जी, भारतीय रेल रोजगार प्रदान करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती रही है हमेशा से। क्या आधुनिक कोच मेंटेनेंस हब जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे?
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कोई नई ट्रेन शुरू करते हैं तो उस ट्रेन के रखरखाव के लिए, उस ट्रेन को चलाने के ड्राइवर्स, गार्ड्स, रास्ते में ट्रेन की सफाई के लिए, खाने के लिए चीजों के लिए, उस ट्रेन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, सभी कुछ, ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना स्मॉल कैप्सूल सा आ जाता है जिसमें सही चीजें एक साथ पैदा हो जाती हैं और उसी जगह डेवलपमेंट, रोजगार पैदा हो जाते हैं। आप कोई नई ट्रेन चलाएं जैसे रीवा से चली या पाटनगर से चली, वहां पे आप देखेंगे स्टेशन के आसपास के एरिया, उस शहर का एरिया, सभी कुछ बदलाव हो जाता है। कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली बात करें वहां वो बदलाव की बात पैदा होती है। तो ये रोजगार आते तो हैं, सब तरफ आते, सरकारी रोजगार भी है और गैर सरकारी रोजगार भी है। और ये बहुत पुराने जमाने से एक रेलवे एक रोजगार जनरेशन का बहुत बड़ा साधन है और सरकार ने इसको बहुत खूबी से सबके सामने पेश किया।
और कंटेनर टर्मिनल की घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है?
कंटेनर टर्मिनल एक लॉजिस्टिक माध्यम को बिल्कुल ही कहते हैं करवट बदलने वाली बात होती है। अगर आप डोमेस्टिक सेक्टर या इंटरनेशनल सेक्टर से भी कंटेनर कहीं लेके आते हैं तो एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंच जाता है, और चूंकि कंटेनर ट्रांसपोर्टेबल मीडियम है, मतलब ये ट्रक पे रेल के माध्यम द्वारा या शिप के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, तो ये आसानी से चीजों को इधर से उधर पहुंचाने में आसानी देता है। और टर्मिनल बनने से क्या होता है कि आप कंटेनर एक जगह इकट्ठे कर सकते हैं और फिर वहां से आगे भेज सकते हैं। तो ये टर्मिनल जहां जहां बनते हैं वहां पे उस एरिया की प्रगति तो होती ही है, बट उस आसपास के इलाकों का सामान इकट्ठा करके आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत पड़ती है।
अरुणेंद्र जी, आपने आधुनिकीकरण के कई प्रयासों का उल्लेख किया है जो कई जगह चलाए जा रहे हैं, क्या आधुनिकीकरण के ये प्रयास ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचेंगे?
वंदे भारत का ही आप एक उदाहरण लीजिए, भारत के 333 जनपद से ट्रेनें ये पास होती है। अगर आप उस जगह से ट्रांसपोर्ट मीडियम को आप विश्व स्तरीय का बना देंगे तो उस इलाके की प्रगति तो होना लाजमी है। ट्रेनें पहले पहुंचती है, उसके बाद प्रगति पहुंचती है, फिर प्रगति से आगे प्रगति होती ही जाती है। उसके अलावा आप सोचें, ट्रैक पे स्लीपर में कंक्रीट लगती है तो वहाँ प्लांट्स बनते हैं उसके, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने नॉन एसी ट्रेनें चलाई हुई हैं, ना वहाँ से यात्री अपनी जीविका के लिए दूसरे शहरों में आ सकते हैं आसानी से। लोग वहाँ हवाई जहाज में चले जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तो रेल ही एक माध्यम है, और रेल ने इस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया है।
जी, और रेलवे के लिए सुरक्षा और स्वच्छता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और मंत्री जी ने भी उस पर बात की है। इसे बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं?
पहले मैं स्वच्छता की बात करूं, स्वच्छता दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो जो रेलवे अपने आप स्वच्छ करे सब चीजों को, जो रेलवे कर रही है, और दूसरे वो यात्रियों से अपेक्षा करती है कि वो गंदगी कम करें, ना करें, या करें तो जो गंदगी उस जगह डालें जहां पे नामित क्षेत्र है। दोनों ही दिशा में प्रयास हुए हैं, तो काफी सहयोग यात्रियों से मिला है, लेकिन अभी बहुत अपेक्षा है कि स्टेशनों पे सफाई की, कुछ कुछ दूर दराज स्टेशन है या स्टेशन जहाँ पे नया काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, वहाँ थोड़ी तकलीफ आती है। जहाँ तक संरक्षा की बात है तो ये रेलवे का दायित्व है कि जब यात्री आपकी ट्रेन पे आता है तो आप उसको सेफ तरीके से उसके स्टेशन में पहुंचाएं। इसीलिए जब मैंने बात करी कवच की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सिग्नलिंग भी अब जगह आपको 6600 स्टेशनों पे लगा हुआ है, फिर जो बेसिक सेफ्टी सिस्टम्स है वो ऑपरेशन में हो, तो वो चीजें बहुत जरूरी है, और इस पर रेलवे का पूरा ध्यान रहता है। एक कोई भी सेफ्टी वायलेशन हो वो चीज को अटेंड किया जाता है। सबसे पहले आप सुना करते थे कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं, वहां पे बस टकरा गई या कोई वैन फंस गई, और वो सब चीजें तो खत्म हो गई, अनमैन्ड तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, और मैन लेवल क्रॉसिंग्स को भी ओवरब्रिज बना के, अंडरब्रिज बना के धीरे धीरे करके समाप्त किया जा रहा है। ये चीजें हैं, और जहां तक कोलिजन्स वाली बात है वो कवच के द्वारा ही है। फायर एक्सीडेंट्स कंट्रोल करने की बेसिक चीज, क्यों फायर पैदा ही क्यों होती है, वो चीज पे भी ध्यान दिया गया है। आप एंटी फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ हो, फोम हो या केबलिंग हो, इन सब पे भी बहुत विशेष रूप ध्यान दिया गया।
जी, आने वाले वर्षों में रेलवे में और क्या क्या सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीद है यात्रियों की यह है कि उनको एक कंफर्म सीट मिल जाए, जिसके लिए 2 महीने पहले उनको टिकट ना खरीदनी पड़े। इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास है, और इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि माल गाड़ी अगर उधर चली जाएंगी तो अपने आप यात्रियों गाड़ी की जगह बनेगी। और भारतीय सरकार ने डब्बों की योजना बनाई हुई है जबरदस्त, 7134 डब्बे पिछले साल नॉन एसी के बनाए थे, जो कि 9541 से बढ़ के हैं, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी ये भी उम्मीद की जाती है कि मालगाड़ी को भी एक टाइम टेबल पे चलाया जाए, जिससे कि जो भाड़ा यातायात है उसमें कोई वो ना, हालांकि अभी आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, कब तक पहुंचेगी, लेकिन अगर टाइम टेबलिंग गुड्स ट्रेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो तीसरी बात सामने आती है कि आप देखेंगे वंदे भारत में अब सोने वाली ट्रेनें, जो कि रात्रि की में बर्थ मिल जाए, उस ट्रेनों का भी शुरुआत होती है, क्योंकि ट्रायल्स वगैरह काफी आगे तक पहुंच चुके हैं, और इस वर्ष उम्मीद है ट्रेन शुरू हो जाए, अगले वर्ष तक शुरू हो जाए। ये तीनों चीज आप देखेंगे, और नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, डबलिंग, ट्रिपलिंग, फोर लेनिंग, ये सब चीजें भी साथ देखने को मिलेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट्स का जरिया है, जिससे हम सामने देखते हैं। तो रेलवे का कायाकल्प बहुत बड़ी संस्था है, और काफी जनता को उस पे इंटरेक्शन कई जगह होता है, तो ये सब चीजें रेलवे की आपको आते हुए समय में दिखाई देगी।
अरुणेंद्र जी, रेल की प्रगति और देश की प्रगति पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण, नई रेलगाड़ियां और ढांचागत विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में